धवला पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम तथात्मनि नमो अरिहंतां, नमो सिद्धां, नमो आयर्यां, नमो वैच्छायानं, नमो लोये सौवसां। त्रिभुवन त्रिभुवन शिरसे हरहे भवभयगह्वादुनिगदेपणं, सिद्धे जीवत्थाने मलिनगुणचूलियं दोषम्। आचार्य श्री विष्णु स्वामी रचित यह धवला नामक गीता है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य। इसमें प्रथम खंड जो जीवस्थान, उसकी अंतिम जो चूलिका नामक ये प्रकरण है, उसमें छठी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 84 पर हम आते हैं। देखिए, अपना विषय यहाँ स्थान का चल रहा है। पहला चैप्टर जो था प्रकृति समुत्कीर्तन, प्रकृतियों के नाम बताए थे, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियाँ। अब स्थान कहने से यहाँ बंध की बात हो रही है, तो बंध के स्थान, स्थान का ही नाम अवस्थान, अवस्थान का हो या स्थान का हो एक ही बात है। इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग मूल प्रकृतियों की अपेक्षा बांटते हैं, यानी यहाँ ज्ञानावरण के बंध स्थान कौन से हैं ऐसा कहेंगे, तो कितनी प्रकृतियाँ एट ए टाइम बनती है उसको कहेंगे वो बंध स्थान है। तो ये नियम है कि ज्ञानावरण के पांचों ही प्रकृतियाँ बनती है, कहाँ से कहाँ तक, पहले गुणस्थान से दसवें गुणस्थान में, बंध की बात दसवें तक बंद है। तो ये कहते हैं कि उसका एक ही बंध स्थान, पांच प्रकृति वाला प्रकृति, यानी पांच प्रकृति वाला एक ही बंध स्थान पाया जाता है। एक बात, इसको कहते हैं बंध स्थान। दर्शनावरणी की 9 प्रकृतियां, तो क्या सभी 9 के 9 एक साथ बनती है? तो हाँ, पहले और दूसरे गुणस्थान में 9 बनती है, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें के पहले भाग तक 6 प्रकृतियां बनती है। तो उसको कहेंगे, पहला हमने देखा था 9 प्रकृति वाला एक बंध स्थान, 6 प्रकृति वाला एक बंध स्थान, और उसके बाद 4 प्रकृतियों का बंध 10वें तक होता है, 4 प्रकृति या 4 प्रकृति वाला तीसरा स्थान। नहीं, 4 प्रकृति कहाँ से कहाँ तक बन रहेगी? नहीं, 8वें के दूसरे भाग, 9वें में भी, 10वें में, ये 4 प्रकृतियाँ बन रही, उसको कहेंगे 4 प्रकृति बंध स्थान। ये कौन कौन से हैं वो हम बाद में कहेंगे, पहले में बंध स्थान में कैसे गिनेंगे। ज्ञानावरण का एक ही बंध स्थान और उसमें प्रकृतियाँ 5 हैं, दर्शनावरण के 3 अलग अलग बंध स्थान, 9 प्रकृति, 6 प्रकृति और 4 प्रकृति। शबा ख्याल में है ना, बंध स्थान किसको कहेंगे, यानी एट ए टाइम कितनी प्रकृतियां बनती है उसकी जो संख्या है, वो तो संख्या वाला एक स्थान कहेगा। 9 सभी बन रही, पहले और दूसरे में हर समय सभी 9 के 9 प्रकृतियां बन रही, दर्शनावरण तीसरे से लेकर 6 बनती, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला नहीं बनती, इसको बंध स्थान के। अब यहाँ हम देख रहे थे ये किसको होता है, क्या अभी 84 नंबर के पुस्तक दर्शनावरण की बात है, जुदी जुदी होते हैं वो, कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक है वो अभी सब नियम बताए, यानी कितनी प्रकृति एट ए टाइम कौन। अवस्थान का अर्थ ही स्थान होता है, दूसरा कुछ स्थान कहो, स्थिति कहो अवस्थान कहो, ये बताया था पेज नंबर 79 पर, जहाँ से दूसरी चुली का प्रारंभ हुई थी उसमें देखो शंका समाधान और उसका नीचे का एक वाक्य भी पढ़ते, स्थान किसे कहते हैं, जिस संख्या में अथवा जिस अवस्था विशेष में प्रकृतियाँ पाई जाती हैं, कितनी संख्या में पाई जाती है, तो हम कहेंगे कि 9 प्रकृतियाँ पाई जाती है, 6 पाई जाती है, 4 पाई जाती है, तो जितनी संख्या में उसका एक जितने ग्रुप बनता है उसे स्थान पे, यानी दर्शनावरण का जो बंध होता है उसमें वेरिएशंस कितने हैं, तो 9 प्रकृतियाँ वाला एक, 6 वाला एक और 4 वाला, फिर कहाँ कौन सी बनती है उस गुणस्थान की अपेक्षा उसका वर्णन करेगा। कहीं भी मार्गणाओं में जो डिफरेंस होगा बनने की अपेक्षा वो भी बताएंगे। अभी देखिए उसके नीचे क्या लिखा था, स्थान स्थिति और अवस्थान, ये तीनों एकार्थक है, लिखा है ना, तो वह मिला क्या आपको? हाँ, स्थान स्थिति और अवस्थान ये एकार्थवाची है, वो वहाँ लिखा था, यानी स्थान कहो या अवस्थान कहो एक ही बात है। अब आना अपना पेज नंबर है 84, ये जो पहले 83 पर जो पढ़ा था 9 नंबर का सूत्र, उसमें क्या बताया था कि 9 प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है, एक ही भाव में वो पाया जाता है। यहाँ अवस्थान एक अर्थ है तो यहाँ अवस्थान दूसरे अर्थ में होता है, यहाँ तो कहते एक ही भाव में अवस्थान है, एक ही भाव में वो स्थित है। कौन सा वो भाव है? 9 प्रकृतियाँ बांधने वाला भाव, ऐसा उसका अर्थ है। वो कहाँ कहाँ है? 2 गुणस्थान, यानी उस भाव की अपेक्षा ये दो गुणस्थान समान। अभी वो बता रहे हैं वो कौन सा जो भाव है वो बता रहे हैं, ये किसके पाया जाता है, ये स्थान कहो किसके पाया जाता है, वो 10वें नंबर के सूत्र में आप बता रहे हैं। तम मिच्छा दीक्षिस वा शासन सम्मा दीक्षिस वा, वह 9 प्रकृति रूप प्रथम बंध स्थान, ये कौन से प्रकृति की बात चल रही है? दर्शनावरण। मिथ्या दृष्टि के और शासन सम्मा दृष्टि के होता है, ये समझ में आई है, आसान है ये सारी बात। 9 प्रकृतियों से निष्पन्न होने वाले, निष्पन्न यानी वो प्राप्त होने वाले, उत्पन्न होने वाले प्रथम बंध स्थान के मिथ्या दृष्टि और शासन सम्मा दृष्टि, ये दोनों स्वामी होते हैं। किसके होते हैं? उसको स्वामित्व होते हैं। वो किसको है? तो पहले 2 गुण स्थान। शंका, यहाँ स्वामित्व किस लिए कहा जा रहा है? समाधान, नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व के अभाव की अपेक्षा एकत्व को प्राप्त स्थान में उत्पन्न होने वाली एक स्वामी जो स्वरूप एकांत बुद्धि को दूर करके उसके स्वामी अनेक है, इस प्रकार को अनेकत्व स्वरूप बुद्धि को उत्पन्न कराने के लिए इस प्रकार की है ना, वो नहीं, इस प्रकार की बराबर नहीं लिख रहा, इस प्रकार की बुद्धि है ना, यहाँ स्वामित्व का कथन किया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? केवल सम्यक्त्व का अभाव है इतना ही नहीं कहना है, पहला और दूसरा 2 गुण स्थान, फिर सम्यक्त्व का अभाव तो तीसरे में भी है, तो केवल सम्यक्त्व का अभाव ये यहाँ कारण नहीं कहेंगे, इसलिए उसके स्वामी अनेक हैं, कौन से? पहले गुण स्थान वाले भी और दूसरे वाले भी, ये कहना यहाँ प्रयोजन है। ये 9 प्रकृति वाला स्थान कहाँ होता है? पहले और दूसरे। अब आगे बढ़ेंगे, तथ्य इमं छन्नम ठाणम निद्दा निद्दा पहला पहला तीन गिद्धियों वज्र। अभी 6 का ठाण इस प्रकार ये बता रहे, कौन सी प्रकृति है तो 9 में से किसको निकालना किसको रखना, वज्र ने उसको वर्जित कर उसको निकाल दिया, कौन सी तीन निकाले? निद्रा निद्रा प्रतला प्रतला चांद्र वज्र निद्दाय पहलाय चक्ष दंशनावरणीय अचक्ष दंशनावरणीय ओही दंशनावरणीय केवल दंशनावरणीय छेदी। दर्शनावरणीय कर्म के उक्त तीन बंध स्थानों में निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और ज्ञान बुद्धि को छोड़कर निद्रा और प्रचला तथा चक्षु दर्शनावरणीय अवधि दर्शनावरणीय केवल दर्शनावरणीय यह छह प्रकृति करते प्रकृति वाला दूसरा बंध स्थान है। ये दू दीर्घ चाहिए, दूसरा नहीं, दूसरा बंध स्थान है। पहला बंध स्थान कितने वाला देखा? नौ वाला। और दूसरा बंध स्थान छह वाला। इसमें कौन से प्रकृतियां नहीं दी? निद्रा प्रचला प्रचला स्थान, ये तीन नहीं, बाकी छह दी। शंका, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि, इन तीन को छोड़कर शेष छह प्रकृतियों का दूसरा स्थान होता है ऐसा सूत्र कहने पर शेष प्रकृतियां ये होती है यह जाना जाता है। आपके लिए वो तीन नहीं है तो बाकी कौन सी बची तो जरूर जानने में आता है, तो फिर उसको फिर दोबारा क्यों कहा, ये उनका प्रश्न है। अतएव उन प्रकृतियों का नाम निर्देश करना अनर्थक है। पृष्ठ संख्या 84 नीचे का एकदम दो लाइन पढ़ेंगे। समाधान, यह कोई दोष नहीं क्योंकि अति जड़ बुद्धि शिष्यों को संभालने के लिए, उन्हें सबके इंटेलिजेंट बुद्धि समान नहीं होती है, कोई तो फट जान लेता है और किसी को एक एक नाम लेके बताना पड़ता है। इसके लिए सूत्र में उन प्रकृतियों का नाम निर्देश किया गया। देखो आचार्य की कितनी करुणा है कि उन्हें तो इतना फुर्सत कहाँ है कि फटाफट बोल देते ना, तो कहते नहीं, फिर भी उनकी ये भावना है कि सभी जीव संदेश। ये सूत्र में भी इतना विस्तार से, क्योंकि सूत्र का स्वरूप ऐसा होता है कि मिनिमम पॉसिबल है, फिर भी ये एदासम छन्नम परिणम एकम ही चेवट थानम बंध मानस। छह प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान होता है। कौन सा भाव? अभी वो छह प्रकृति के बंध करने वाला भाव, नहीं तो जो तीसरा गुण स्थान है और सातवां गुण स्थान है उनमें इतनी छह ही बंदी होती है, परंतु उस भाव की अपेक्षा वो समान है। ख्याल में, पहले दो गुण स्थान में नौ प्रकृतियां बनती दर्शनावरणी, तीसरे से लेकर आठवें के पहले भाग तक छह प्रकृतियों का बंध होता है। शंका का पूछता है, यहाँ पर छह प्रकृतियों वाले स्थान के एकत्व कैसे संभव है? तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा पहला भाग, ये सब इतने जुदे जुदे गुण स्थान, तो देखिए उसमें एकत्व कैसे हो सकता है, एक ही भाव कैसे कह रहे हैं? उसका समाधान, छह प्रकृतियों के बंध योग्य भाव की अपेक्षा कोई भेद न होने से छह प्रकृतियों वाले स्थान के एकत्व बन जाता है। देखो एक परिणाम है जीव का, परंतु उसमें एक ही परिणाम से जो जो कर्म बनते हैं, अभी वो कर्म बंध की अपेक्षा उसी परिणाम में वो जुदा भेद आया कि नहीं आया? जिसे सारे समय दृष्टि मान लेते चौथे से सारे समय दृष्टि, परंतु किसकी अपेक्षा से ये छह प्रकृतियों का बंध कर रहा है, अन्य प्रकृतियों के बंध करने की अपेक्षा नहीं। जिसे चौथे वाला है वो अप्रत्याखंड का बंध कर रहा है, पांचवें वाले को वो अप्रत्याखंड नहीं प्रत्याखंड, छठे सातवें आठवें में संज्वलन का है उदय और वस्तु, इसकी अपेक्षा डिफरेंस है। दर्शनावरण की छह के बंध की अपेक्षा समान है, यानी एक ही परिणाम में कितनी सूक्ष्म भेद होगी उसकी। परिणाम तो हर समय एक जीव कर एक ही कर रहा है, जीव का एक परिणाम है एक समय में, तो उसमें इनकी इसकी अपेक्षा भेद है ना। उसी एक परिणाम से जो अन्य अन्य कर्म बन रहे हैं, आठ कर्म बन रहे हैं, तो उनमें भी कौन सी कितनी प्रकृतियां बन रही उसकी अपेक्षा से भेद पाएगा, ये कहना चाहते हैं। बंधमान के ऐसा कहने पर बंध करने वाले जीव का बंधमानस तो बताएगा ना, अथवा बंधने वाले कर्म का ग्रहण करना चाहिए। बंधमानस एक उसका एक स्थान है, बंधने वाले कर्म की अपेक्षा को या जीव के भाव की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर का सूत्र। अभी वो तो बताया एक स्थान है, पर वो कौन से उन स्थान है वो अभी यहाँ बताया। तम पेज नंबर है 85। तम सम्मा मिच्छा दिप्तिस्स वा असंजद सम्मा दिप्तिस्स वा संजदा संजदस्स
वार संयतवा।
अभी संयत कहकर छोड़ दिया, वो संयतों में जो विशेषता है वो बताएं, क्योंकि संयत कहने से सभी संयतों को तो नहीं लेना है, छह प्रकृति का बंध
कहाँ तक है वो बाद में बताएं। क्या प्रश्न है शोभा? एक साथ छह बनती है, ये छह की बात चल रही है, उसी को बंध स्थान कहते हैं। बंध स्थान का अर्थ होता है एट ए टाइम कितनी प्रकृतियां बनती है। पहले और दूसरे गुण स्थान में हमने नौ के नौ देखे दर्शन, हर समय दर्शनावरण के नौ प्रकृतियां बनती है। वही जीव तीसरा चौथा पांचवा छठे सातवा वाला जो है उसके हर समय में छह एट ए टाइम बनती है। ज्ञानावरण में क्या देखा था, पहले से दसवें तक पांचों के पांचों बंध, तो वहाँ एक ही प्रकार पाए, एक ही बंध स्थान है, उस बंध स्थान में प्रकृतियां पांच। दर्शनावरण के तीन बंध स्थान है, नौ बंधने वाला एक स्थान, छह बंधने वाला एक स्थान और चार बंधने वाला एक स्थान, वो उसमें क्रम नहीं है। तो वो किससे होता है, अभी उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। वह छह प्रकृति रूप द्वितीय बंध स्थान, इसमें क्लियर हो ना, वो छह के छह बनती सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, और वो अ के ऊपर एक और मात्रा देना, संयत के होता है। अब संयत कह दिया सूत्र में, तो संयत तो छठे से लेकर बंधने बंद करने वाले बंधक जो है वो तेरहवें तक होते हैं, तो उसमें से किसको लेना है उसकी बात बताएं। सूत्र में संयत के ऐसा पद कहने पर अपूर्व गुण स्थान के प्रथम सप्तम भाग में, प्रथम सप्तम भाग का अर्थ होता है सात भागों में से पहला भाग। अपूर्व गुण स्थान के सात भाग करेंगे तो उसमें से जो पहला वाला ऐसा कहेंगे उसका सातवां भाग, प्रथम सातवां भाग, सातवां 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 ऐसे हम सात भाग करें ना, तो पहले वाला सातवां इस तरह उसका अर्थ होता है, यानी सात में से पहला भाग। अर्थात अगले लिखा है अपूर्वकरण के सात भागों में से प्रथम भाग में स्थित संयतों का ग्रहण करना चाहिए, यानी वहीं तक वो छह प्रकृति बन देगी, उसके बाद दूसरे भाग से लेकर चार ही प्रकृतियां बन देगी, ये उसका अर्थ है। शंकाकार पूछते हैं इन पूर्वोक्त छह प्रकृतियों के बंध के यदि सूत्रोक्त ये सब यानी सम्य मिथ्या दृष्टि आदि स्वामी होते हैं तो फिर कैसे उन सबका एक भाव में अवस्थान हो सकता है, क्योंकि कितने उनके भावों में कितने विकरण से, तीसरा गुणस्थान वाला तो एकदम जात्यंतर परिणाम, बाकी समय दृष्टि है पंच चौथे वाले कहाँ मुनि कहाँ क्या कहा है, तो स्थिति उसमें कैसी समानता हो सकती है उसका प्रश्न है, क्योंकि बहुतों के एकत्व का विरोध आता है, ये गुणस्थानों में एकत्व कैसे हो सकते हैं, तो गुणस्थान नहीं बन सकते थे, ये उसका प्रश्न। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि छह प्रकृतियों का बंध करने वाले इन बहुत से स्वामियों के भी छह प्रकृतियों के बंध परिणाम की अपेक्षा समानता होती है। किसमें समानता है, छह का बंध करने की अपेक्षा वह सबमें समानता है, एकत्व होने में कोई विरोध नहीं है। गुणस्थानों के जो हमने भेद पाए थे वो मुनि की अपेक्षा है, दर्शन होने की दर्शन होने की उसकी अपेक्षा भेद है, पर यहाँ दर्शनावरण के बंध की अपेक्षा वो छह प्रकृति बांधने वाला जो परिणाम उसमें भेद है, ये उसका अर्थ है। आगे बढ़े अभी 86 पेज पर, अभी चार वाला स्थान बताए, नौ वाला होगा, छ वाला हुआ, अभी चार वाला, इसमें से निद्रा प्रश्न निकलिए। तथ्य इमं चतुर्णम स्थानम निद्राय पहलाय वज्र, यानी छ में से ये दो वज्र वज्र की यानी वर्ज यानी निकाल, क्या बाकी रखा, चक्षु दंशनावरणीयम अचक्ष दंशनावरणीयम ओधि दंशनावरणीयम केवल दंशनावरणीयम चेति। दर्शनावरणीय कर्म के उक्त तीन बंध स्थानों में निद्रा प्रज्ञा को छोड़कर चक्षु दर्शनावरणीय
अभी निद्रा प्रचला को इसके पूर्व सूत्र में उसको रखा था छे वाले, तो छे वाले स्थान में से दो और निकाले, चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय। यह चार प्रकृति, यानी जिसमें चार प्रकृतियां बन रही है, चार प्रकृति वाला, चार प्रकृति, तीसरा बंद स्थान है। पहला नौ का देखा, दूसरा छह का देखा, ये तीसरा बंध स्थान है जिसमें चार प्रकृतियों का बंध होता है। यानी तीन जो है वो वेरिएशन हुए ना, उसको स्थान कहते हैं। नौ का बंधन, छह का बंधन, चार का बंधन। यह सूत्र निष्फल नहीं है, शंकाकार पूछेंगे उसके पहले बता दिया, क्योंकि छोड़ी जाने वाली प्रकृतियों की प्ररूपणा के बिना विवक्षित चार प्रकृतियों को जानने का अन्य कोई उपाय नहीं है। यानी कंफर्म कर रहे हैं, कोई भी चार बनते ऐसा नहीं है, कौन सी नहीं बन देगी और कौन सी बन देगी, दोनों के लिए एक मिनट कहाँ पर लिखा है ये आपका वाक्य पढ़ो। चार पदों की उन्होंने लिखा है क्या?
हाँ,
प्रकृतिक प्रकृतिक हमने मूल सूत्र में देखा था, चार प्रकृतिक तीसरा बंध स्थान उसमें देखा था, किसमें? सूत्र में, उसमें प्रकृति की लिखा है ना।
हाँ,
और अभी हाँ मैंने पढ़ा, देखो यह सूत्र निष्फल नहीं है, क्योंकि छोड़ी जाने वाली प्रकृतियों की प्ररूपणा के बिना विवक्षित चार प्रकृतियों को जानने का, इसमें क्या लिखा
है, चार पदों के,
चार प्रकृतियों के चार पदों के, ऐसा लिखा ऊपर के प्राकृत में वज्जी मज्जमान पयड़ी प्ररूपणा बिना अक्पिद चतु पयड़ी अवगमे, चार पदों के कोई वो उन्होंने अपनी ओर से डाला है, तो उसका कुछ खास इन चार पद यानी उसके चार अलग अलग नाम बताए, पर मूल प्राकृत में वो शब्द नहीं है, वो उन्होंने अपनी ओर से डाले, जानने को अन्य कोई उपाय नहीं, पर तो डाले तो भी कुछ अर्थ में फर्क नहीं पड़ता, ऐसा जहाँ वेरिएशन है बता देना भाई। व्यतिरेक द्वारा विधीयमान प्रकृतियों के ज्ञात हो जाने से क्या कहना चाहते हैं? अभी दूसरा प्रश्न, पहले तो बता दिया कि ये निष्फल नहीं है, क्योंकि कौन सी नहीं बनती वो बताना जरूरी है। अब कोई ऐसा पूछ सकता है, कौन से नहीं बता दिया, दो का निषेध किया, तो बाकी जो है वहाँ तो समझ में आती है, फिर दोबारा उसका नाम क्यों? तो ये इसका डायरेक्ट उत्तर दे रहे, व्यतिरेक द्वारा, व्यतिरेक द्वारा यानी उसको हमने निकाल दिया, जो नहीं वो बताया, विधीयमान प्रकृतियों के ज्ञात हो जाने, विधीयमान जो अस्थिर जो नहीं बनती उसका ज्ञान करा दिया, तो जो अभी बंधेगी उसका ज्ञान हो जाता है, विधीयमान यानी वहाँ अस्थिर रूप से बंधने वाली जो है उसका ज्ञान हो जाने से, पुनः सूत्र में प्रकृतियों का नाम निर्देश करना निष्फल है, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय के नए वाले शिष्यों के अनुग्रहार्थ उस निर्दिष्ट प्रकृति निर्देश के निष्फलता का विरोध है। क्या कहना चाहते हैं? द्रव्यार्थिक नए वाले ने इतना बता देने से वो जान ले, चार कहने से वो समझ जाते, परंतु उनको उपकार करने के लिए ये प्रकृतियों का नाम नहीं बताना वो निष्फल है ऐसा नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नए वाले भले नहीं जान, तो फिर दोबारा उसको बताने में तो कोई उसमें विरोध तो उसका नहीं है, क्योंकि जो मंद बुद्धि वाले होते हैं वो उसके लिए वो उपकार। आगे बढ़ते हैं। एदास्यम चतुर्णम पयड़ीनम एकम्मी छेवट्ठानम बंध मानस, इन चार प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है, अवस्थान है एक ही भाव में वो स्थित है, एक ही भाव में उनकी स्थिति है। कौन सा भाव? चार का बंध करने वाला भाव, अन्य कौन से मोहनीय बंध रहे उसकी अपेक्षा समानता नहीं, समानता की अपेक्षा से चार का बंध हो गया।
क्योंकि यहाँ नाम कर्म की जुदी जुदी बन रही है, मुनि की जुदी जुदी बन रही है, उस अपेक्षा से उसके डिफरेंस समानता किस बात के लिए, चार का बंध हो रहा है, दर्शनावरण का चार का बंध हो रहा है, इसके लिए समानता। यहाँ पर इस प्रकार अर्थ का संबंध करना चाहिए कि इन चार प्रकृतियों को बांधने वाले जीव का एक ही स्थान होता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के अर्थ में प्राकृत भाषा में छठी और सप्तमी विभक्तियों की प्रवृत्ति का होना संभव है, शेष सूत्रार्थ सुगम है। मेरे को प्राकृत के नियम बताए उसकी दूसरी बात, उसका हिंदी तो अर्थ बदले गया। अब वो किसको होता है चार प्रकृति, तो केवल इतना ही बताया, तम संजदस्य, वह चार प्रकृति रूप तृतीय बंधस्थान संयत के होता है। अब संयत कहने से छठे सातवें वाला भी संयत है क्या, उसको चार प्रकृति बनती है कि छह बनती, छह बनती, तब यहाँ कहेंगे स्पेसिफिक, क्योंकि अपूर्व कर्म के सात भागों में से द्वितीय भाग से लेकर सूक्ष्म सांप्रायिक वो थिक हुआ सांप्रायिक शुद्धि संयत तक महाऋषियों में इन चार प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। आठवें पिछले भाग से सातवें भाग तक नौवा और दसवें तक चार प्रकृतियों का बंध है। शंकाकार पूछ लेते हैं 87 पे, संयत के इस एक वचन के द्वारा अपूर्व कर्ण आदि बहुत से संयतों का निर्देश कैसे घटित होता है, या एक वचन बताया संयत के होता है। अब आप कहेंगे इसके बहुत सारे संयत अलग अलग बता दिए, आठवें वाले कुछ है, नौवे वाले कुछ है, दसवें वाले कुछ है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि बहुत से भी उन संयतों का संयतत्व की अपेक्षा एकत्व मानने में कोई विरोध नहीं। हमने देखा छठे से चौथे तक सबको संयत मिले, संयत पाने की अपेक्षा समान है। एकत्व और अनेकत्व परस्पर में पृथकभूत नहीं है, क्योंकि वे भिन्न पाए नहीं जाते। एकत्व और अनेकत्व सर्वथा जुदे जुदे नहीं है, अर्थात वस्तुओं में संग्रह नहीं से अभेद विवक्षा होने पर एकत्व, उसका अर्थ बता क्यों मैं, और व्यवहार नहीं से भेद विवक्षा होने पर अनेकत्व का कथन किया जाता है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, पहले संग्रह नए और व्यवहार नए क्या बताया है, जहाँ सभी वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है उस अपेक्षा से बात करेंगे उसको संग्रह नए के, जैसे जीव द्रव्य कहेंगे तो उसमें सारे जीव समाप्त, तो इसको कहेंगे हम संग्रह। अभी उन जीवों में ये संसारी है, ये मुक्त है, ये भेद की है, ये व्यवहार नहीं हुआ। अब संसारी जीवों में भी ये स्थावर है, ये त्रस है, तो हमने भेद किए, ये व्यवहार, यहाँ सब स्थावर, ये हमारे अभिप्राय पर निर्भर है, हम भेदों को लक्ष्य कर रहे हैं कि इकट्ठे को लक्ष्य कर रहे। सभी स्थावरों को, पांचों प्रकार के स्थावरों को एक नाम दिया हमने, एक में गर्भित किया, वो ही होगा संग्रह है, और उन्हीं स्थावरों के जुदे जुदे भेद किए, यानी वो त्रस और स्थावर वाला भेद की अपेक्षा स्थावर कहेंगे तो व्यवहार नहीं, और सारे त्रस स्थावरों को इकट्ठा करने की अपेक्षा अगर उसको देखेंगे तो वो संग्रह, यानी संग्रह व्यवहार, संग्रह नहीं व्यवहार, ऐसा मूल एक भेद लिया। वैसे तो सर्वथा शुद्ध संग्रह नहीं तो सत, बस इतना कहते हैं, सत कहने से क्या उसमें कितने द्रव्य आ गए, छह द्रव्य आ गए, तो सत कहने से वो शुद्ध संग्रह नहीं है, उसमें कोई अभी सबको इकट्ठा कर, अब उसमें जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये हमने भेद किए, छह भेद हुए उसको व्यवहार हुए, व्यवहार नहीं गए, फिर भी उन्हीं जीव कहने से सभी जीवों को हमने इकट्ठा गिन लिया ना, तो उसको उस अपेक्षा से संग्रह नहीं कहेंगे, और फिर उसके भेदों की चर्चा करेंगे तो व्यवहार। तो ये तो जितने भेद 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 करेंगे तो उन भेदों का जो संग्रह होगा उसको संग्रह नहीं कहेंगे, यानी कोई एक ही चीज को हम बता रहे हैं उसको संग्रह की अपेक्षा भी कह सकते, उसको एक भी कह सकते, सारे संसारी मुक्त सब कुछ इकट्ठा वो जीव कहेंगे तो ये हो गया एकत्व एक किया, उसी के भेद करके कहेंगे तो अनेक। तो संग्रह न व्यवहार न एक ही बात पर लागू हो सकते हैं। एक फिर इसका वाक्य पढ़ते हैं, सेकंड लाइन से पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि एकत्व और अनेकत्व परस्पर में पृथकभूत नहीं है, संयतों की अपेक्षा उसमें एकत्व है, परंतु होनी की अलग अलग बात है उसकी अपेक्षा से उसमें भिन्नता भी है, क्योंकि गुणस्थान में बड़े ही जुदे जुदे हैं। संयत कहने से सारे गुणस्थान इकट्ठे हो गए, छठे से लेकर चौथे, और उसी में कुछ विशेषताएं उसकी अपेक्षा भेद भी होगी, तो एकत्व भी अनेकत्व भी, क्योंकि भिन्न पाए नहीं जाते, अर्थात वस्तुओं में संग्रह न से अभेद विवक्षा होने पर एकत्व, अभी हमने सभी जीव कहने से एकत्व आ गया, और व्यवहार नय से अभी हमने दूसरा नय लगाया, भेद विवक्षा होने पर अनेकत्व कथन किया जाता है, तो उसमें हमने भेद लगाए तो उसको हम अनेक भी कहेंगे, अनेकता उसमें आ गई। ये दर्शनावरण की बात यहाँ खुली हुई, ज्ञानावरण की कितने बंधस्थान लेके थे, एक ही, और वो पांच प्रकृति वाला प्रकृतिक। दर्शनावरण के बंधस्थान तीन, कितने कितने वाला, नौ वाला, छह वाला, चार, ये तो पक्का हो गया ना, फिर आसान है अभी, अब ये आगे का तो और आसान है। वेदनी की कौन से दो प्रकृति अपनी भाषा में पहले समझ, साता और असात, दोनों इकट्ठा बनती है कि एट ए टाइम, जब साता बन गई तो असात नहीं, असाता बन गई तो साता, तो एक है प्रकृति का बंधन, वो उसके जो भंग है वो जुदे जुदे हो, किसी को साता बंधेगी किसी को असाता बंधेगी, पर बंधेगा तो एक ही, संख्या की अपेक्षा कोई भेद नहीं, तो पहले गुणस्थान वाले को भी एट ए टाइम तो एक ही बनती है ना, और तेरहवे वाले को वो भी उसको साता ही बनती है, उसको भी एक ही बन रही है, पहले से तेरहवे तक एक ही बंध स्थान है, पर उसमें विकल्प दो है। जैसे असाता कहाँ तक बनती है मालूम है, छठे में बंध विच्छेद यानी छठे तक बनती है, यानी छठे गुणस्थान में साता भी बन सकती है असाता बन वहां तक, सातवें के आगे तो केवल साता ही बनेगी, ख्याल में है नहीं ये बात, तो इसको कहें एक प्रकृति वाला स्थान, अभी उसकी विशेषता भी यहाँ पढ़ेंगे। देखो वेदनी की बात अपन ऊपर पढ़ेंगे सूत्र में 17 नंबर के, वेदनीय कम्मस्य द्वे पयड्यो सादा वेदनीयम चेव असादा वेदनीयम चेव। वेदनीय कर्म की दो ही प्रकृतियां हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। अब यहाँ पर भी कहेंगे फिर दोबारा, हमने बताया पहले बता चुके थे प्रकृति रस प्रकृति का कीर्तन में, कहते हैं विस्मरणशील शिष्यों को स्मरण कराने के लिए, तो हमारे कितने उपकार करते हैं इतना ख्याल रखते, अथवा बंधने वाली प्रकृति मात्र के अंतरंग कारण को बताने के लिए यह सूत्र रचा गया है, शेष सूत्रार्थ सुबह। बंधने वाली प्रकृति मात्र के अंतरंग कारण, अंतरंग कारण है कि जिस भाव से वो बंध रही है उसकी अपेक्षा, एदासिम दोनम पयड़ियम एकम्मी चेवठानम बंध मानस, इन दोनों प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भवोभेव है, वो भाव में चले एक ही भाव में अवस्थान होता है, जब साता बांधना है तो साता को बांधने का भाव है, और असाता बांधने तो असाता को बांधने का भाव है। शंकाकार पूछते हैं साता वेदनी और असाता वेदनी इन दोनों ही प्रकृतियों का एक साथ बंधन नहीं होता, क्योंकि उन दोनों प्रकृतियों के बंध के कारणभूत विशुद्धि और संक्लेश, देखो विशुद्धि से साता वेदनी बनता है, संक्लेश परिणामों से असाता बनता है, विशुद्धि और संक्लेश परिणामों की एक साथ प्रवृत्ति का अभाव, यानी दोनों एट ए टाइम नहीं होगी, जीव को विशुद्धि होगी या संक्लेश होगा, ये तो स्टेटमेंट बता दिया, प्रश्न उसका बात, इसलिए इन दोनों प्रकृतियों का एक स्थान है यह बात घटित नहीं होती, किंतु दोनों प्रकृतियों के दो स्थान कहना चाहिए, ये उसकी कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है समझ में आएगा, दो प्रकृतियां हैं तो दोनों के अलग अलग दो स्थान बताओ, ये कहना चाहिए समाधान।
यदि बंध के कारण भूत विशुद्धि और संकलेश परिणामों के दो भेदों के कारण वेदनीय कर्म की मूल प्रकृति के साता वेदनीय और असाता वेदनीय ये दो स्थान होते हो तो भले हो, क्योंकि दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंधन नहीं होता। तथा कुछ डिफरेंस है क्या उसमें? दो भेदों के कारण,
दो भेदों में
परिणामों के कारण नहीं,
परिणामों के भेद,
परिणामों के भेद के कारण। क्या लिखा
है?
भेद से। अच्छा, परिणामों के भेद हम प्राकृत पढ़ेंगे। तेसिम बंध कारण विशोली संकिले मान संकिले स्थान एकमेय पौत्रीय अभाव की प्रवृत्ति का अभाव है। बंध कारण विषय संकलेशन वे भेदा तो बहु ऊपर लिखा है दो भेदों के कारण, यानी ये जो मूल में है वो ठीक है। अभी आगे एक साथ बंधक था मूल प्रकृति के व्यतिरिक्त वेदनीय कर्म अन्य उत्तर प्रकृतियों का अभाव है। मूल प्रकृति से व्यतिरिक्त यानी मूल प्रकृति को छोड़कर मूल परिवर्तित उत्तर परिणाम अभाव मूल प्रकृति से व्यतिरिक्त अन्य उत्तर प्रकृतियों का अभाव है ऐसा कहीं। उसमें क्या लिखा है? शब्द
वेदनीय कर्म,
वेदनीय कर्म
वेदनीय कर्म के अन्य उत्तर प्रकृति
वेदनीय कर्म लिखा है। वेदनीय कर्म के चाहिए वेदनीय कर्म के अन्य उत्तर प्रकृतियों का अभाव है, किंतु ग्रंथकार ने इस वेद की विवक्षा नहीं की। देखो क्या कहना चाहते हैं, जब एक प्रकृति का बंधन है और उसमें ऑप्शनल हो सकता है, या तो साता वेदनीय बनेगी या असाता वेदनीय, तो उसको उसके भंग कहने जा रहे हैं। एक होता है स्थान, स्थान में संख्या निश्चित है और वो संख्या में यदि वो कोई वेरिएशन हो गया तो उसको वो भंग में आते हैं। इसी स्थान तो एक प्रकृति वाला है और उसके भंग दो, साता का स्थान और असाता का स्थान, परंतु संख्या तो एक है। ये नाम कर्म में ये बातें बहुत सारी आ जाएगी, कितने प्रकृतियां एक साथ बनती है उसमें वो जब हम देखेंगे तभी उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो 23 का बंद होगा या किसी को 25 का होता है तो 25 वाले के कितने वेरिएशन हो, ये लब्धि पर्याप्त वाली जो केंद्रीय, तो उसमें ये बहुत सारे वेरिएशन हैं। वो एक इंद्रिय पर्याप्त के भी होगा 25 वाला स्थान या द्विंद्रिय अपर्याप्त के दो होगा, तो वो गिनने के लिए सेम उसकी संख्या तो उतनी होती परंतु तो प्रकृतियों के वेरिएशन होते तो उसके वो भंगों में डालते। यहाँ वही बात हो गई है, उन्होंने उस अपेक्षा से उसकी चर्चा नहीं की है, परंतु हम आगे शंकाकार कहते हैं तो फिर ग्रंथकार का अभिप्राय क्या है, यानी एक ही बंध स्थान कहने का हेतु क्या है? समाधान कहते हैं साता वेदनीय रसाता वेदनीय इन दोनों ही प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान होता है ऐसा कहने पर एक संख्या आवश्यक होने से, क्या कहा है? एक भाव की अपेक्षा संख्या एक ही अपेक्षा से, एक संख्या आवश्यक होने से एक ही भाव में अवस्थान है, यानी वो संकलेश विशुद्धि वाला भाव सेम नहीं है, तो एक प्रकृति बांधने की अपेक्षा वो समान है, इसलिए वो एक भाव है। अर्थात दोनों प्रकृतियों का एक ही बंध स्थान है ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। संख्या की अपेक्षा समानता है, बस या तो साता बंधेगी या तो असाता बंधेगी, तो एक ही, ये उसका कहने का अभिप्राय है। यदि यह अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा तो वेदनीय कर्म के बंध स्थान की एकता का विरोध आएगा, शेष सूत्रार्थ सुगम है। किस अपेक्षा से उसको एक ही बंध स्थान कहा है वो हमको अपेक्षा ख्याल में लेंगे।
अभी वो एक स्थान किसका होता है, संख्या में एक वाला स्थान किस किस के होता है। तब मिच्छा दिट्ठि स वा शासन सम्मा दिट्ठि स वा सम्मा मिच्छा दिट्ठि स वा असंयत सम्मा दिट्ठि स वा संयदा संयत स वा संयद स वा। अभी सभी तो वेदनीय का तो बंद होता है, ये पहले से 13वें तक होता है और होता है तो एक ही होता है, तो इसलिए सब स्थानों को लेना नहीं। वह वेदनीय कर्म संबंधी बंध स्थान कितने का होता है, एक का, एक प्रकृति वाला बंध स्थान और स्थान भी एक ही है। मिथ्या दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि, समय मिथ्या दृष्टि, असंयत समय दृष्टि, संयता संयत और संयत के होता है। सूत्र में संयत के ऐसा सामान्य पद कहने पर सहयोगी भगवंत तक के संयतों का ग्रहण करना चाहिए, यानी 13वें गुणस्थान तक सबको लेना, 14वें वाले को बंदे नहीं है, आगे के संयतों का नहीं, क्योंकि वहां पर अर्थात अयोगी भगवंत के इस स्थान के बंधन का अभाव है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। तो ये वेदनीय का हो गया। वेदनीय में देखो छठे गुणस्थान तक सांता भी बन सकता है, साता बनने की तो एक, सातवें से आगे के गुणस्थानों में साता का ही बन, और वो भी जो साता का बंध हो रहा है ना, साता का बंध जिसको स्थिति अनुभव सहित कहाँ तक बंधेगा, 10वें 11वें 12वें 13वें में योग है, कषाय नहीं है, तो वहाँ साता वेदनीय आया और चला गया एक समय वाला, यानी वो उसकी स्थिति नहीं थी, क्रियापद आश्रय क्रियापद बंद भी। अभी मोहनी कर्म के देखेंगे। देखो मोहनी के कारण तो गुणस्थानों के भेद है, तो उसमें उसकी अपेक्षा ये बंद के स्थान भी जुदे जुदे हैं। तो हम थोड़ी अपने से चर्चा करें, बाद में यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि पहले केवल संख्या संख्या पढ़ेंगे, फिर वो नाम याद करेंगे, उसमें कोई अच्छी नहीं बात। तो हमको ये देखना है मोनी कर्म है कि नहीं। दर्शन मुनि में तो एक मिथ्या, तो एक बंध के ही कारणभूत एक ही है मिथ्या, बंधने वाली प्रकृति एक, कौन सी, मिथ्या। चारित्र मुनि कितने मालूम है, 16 तो कषाय है और 9 कषाय, 25। तो मेरा सवाल ये है एट ए टाइम कितने बन सकते हैं, मिथ्या तो बन सकता है, उसके साथ मिथ्या दृष्टि को 16 कषाय भी बन देगी, तो 9 कषाय सबके सब एट ए टाइम बन देगी कि नहीं। तीन वेद में से एक ही वेद बन देगा, हास्यरति युगल वाला हास्यरति बन देगा या शोकरति बन देगा, तो वही युगल सब दोनों ही बनते रहते हैं जब तक बन रहे तक, यानी 9 कषाय में से, देखो 9 कषाय में से या तो हास्यरति बनेगी या शोकरति, तो ये दो हो गए। तीन वेद में से एक ही वेद बनेगा, दो वही जुगुप्सा तो बनते ही है, तो 5 ही बन देगी। अभी हमको गुणस्थान के अनुसार ऐसा सोचना है, 9 कषाय में से 5 ही लेना है और मिथ्या तो 16 कषाय तो लेना है, तो मिथ्या तो लिया 16 कषाय लिया 17 लिए और फिर इसमें से 5 लिए, 5 मिथ्या दृष्टि तो तीनों वेद बनते रहेंगे पर अलग अलग जीवों के अलग अलग, हास्यरति भी बनेगी शोकरति भी बनेगा, एक ही जीव के अलग अलग समयों में अलग अलग पर बनेगी तो 5, तो ये 16 एक 17 और ये 5 22 का बंध स्थान होगा, कई उसमें वेरिएशन भंग किसके पड़ेंगे, तीन वेदों में से अलग
पड़ेगा
वैसे 9 कषाय में तीन वेद में से एक वेद बंधेगा, तीनों बंद का बन सकते हैं पर एट ए टाइम नहीं, एक के बाद एक वो अंतर्मुख में पलट पलट कर बनता ही रहता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव एक कोई वेद बांधेगा, हास्य रति वाला युगल एन दो प्रकृति हुई और भय जुगुप्सा हर समय बनती निरंतर बनती, तो कितने हुए मिथ्या दृष्टि को, एक मिथ्या 16 कषाय और 5 9 कषाय, ये कौन से उसकी चर्चा बाद में करेंगे, 5 ही बंधेगी अभी तो कितने हो गए 22। दूसरे गुणस्थान में इसमें से क्या नहीं बंधेगा, मिथ्या तो नहीं बने, अनंत अनुबंधी तो बंधेगा, बंधेगा दूसरा गुण स्थान में बनता है,
तो वो 21 वाला स्थान होगा दूसरे गुण का। अब उसमें नपुसक वेद नहीं बंधेगा भाई, वो छोड़ दो, कितने बंधेंगे 21। अब तीसरे चौथे वाले कितना बंधे
देगा,
तो नहीं होता,
मिथ्या
ज्ञान है परंतु उसको मिथ्यात्व नाम की प्रकृति नहीं बन रही, अनंतानुबंधी बन रही है, उसका उदय भी है। तीसरे चौथे में क्या पोजीशन है, अनंतानुबंधी भी नहीं बंधेगा, 21 में से 4 और माइनस करो तो क्या बंधेगा, यानी कितने बंधेगे 17 बना। अब वहाँ तो अभी समय दृष्टि हो गया, वो तो स्त्री वेद भी नहीं है, नपुंसक वेद भी नहीं बनेगा, एक पुरुष वेद बनेगा, परंतु हास्यरति शोकरति का ऑप्शन है अभी, यानी 5 तो बन ही रहे, तीसरे भी चौथे को, पांचवे में प्रत्याख्यानावरण भी नहीं बने, तो 17 में 4 महीना 13। पांचवे में प्रत्याख्यानावरण का उदय है ना, बंद भी है परंतु अप्रत्याख्यान नहीं बन रहा है, पहले अनंतानुबंधी को छोड़ दिया, फिर 4 अप्रत्याख्यान को छोड़ दिया, तो अभी 17 में से 4 गए, 13 बंद, पांचवे वाले को 13 का, छठे सातवें वाले को अभी प्रत्याख्यानावरण भी नहीं बनता, संज्वलन है, पुरुषवेद है छठे वाले को, हास्यरति या शोकरति भी है और भैजुगुप्सा भी है, तो छठे को भी कितने बन रहे हैं 9, सातवें को भी 9, परंतु सातवें वाला अभी हास्यरति बांधेगा, शोकरति नहीं बांधेगा, पर बनती है उसकी भी 9। आठवें में गया तो वहां भी 9 बन रहे, जब तक वो बंध विच्छेद नहीं होती आठवें के अंत में हास्यरति और भैजुगुप्सा, तो 9वें में जब एंटर हुआ तो क्या शुरुआत में पुरुष वेद एक बन रहा और संज्वलन बन रहा, यानी 8वें तक 9 का बंद होता है, 6वें 7वें 8वें में 9 का बंद हो रहा है, 9वें में एंटर किया तो 2 ही का बंद है, एक पुरुष वेद बन रहा है, 5 का बंद है, बुरे 2 का है, एक पुरुष वेद बन रहा है और क्रोध मान माया लोक संचलन के बन रहे हैं, अभी 9वें गुणस्थान के बहुत सारे भाग हैं, फिर क्या हो जाता है, वेद का उदय भी और बंद भी रुक जाता है, तो इस संज्वलन की 4 का बंद स्थान, पहले 5 का बंद स्थान था, फिर 4 का बंद स्थान, उदय किसी एक कषाय, उसके बाद बंद 3 का होगा, क्रोध का बंद रुक जाएगा, फिर क्रोध मान का रुकेगा, माया लोक 2 का बंद स्थान, फिर माया का भी रुक जाएगा, एक लोक बंधेगा और 9वें के अंत तक एक लोक बंधेगा, 10वें में वो भी नहीं बंधेगा, मोहनी के बंद स्थान वहां पर भी, वहां तक ही है, कितने कितने के 22 वाला पहले, दूसरे में 21 वाला, तीसरे चौथे में 17 वाला, पांचवें में 13 वाला, छठे सातवें आठवें में 9 वाला, छठे सातवें और आठवें में 9 वाला, 9वें में शुरुआत में 5 वाला, फिर 4 वाला, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, 9वें, तो मोने के बंद स्थान कितने गिने आपको गिनना है, 22 का, 21 का, 17 का, 13 का, 9 का, फिर 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, तो मोनी के बंद स्थान 10 हो गए। अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा, हमने अपने हिसाब से उसको कैसे कैसे होते उसकी चर्चा, दसवें में बनता ही नहीं मोनी, ज्ञान दर्शन अंतराय बन रहा है वहाँ पर, हाँ वेदनीय बन रहा है, गोत्र बन रहा है, मोनी रुक गया। देखो आयु का बंधन 7वें तक है, यानी 7वें वहाँ तो 8वें ही कर्मों का बंधन हो सकता है, अभी मोहनी का बंधन 9वें तक है, तो 10वें गुणस्थान में ना आयु है ना मोह है, बाकी कर्म बंध रहे, अभी उसमें से कौन सी प्रकृतियाँ बन रहे उसकी चर्चा नहीं कर, मूल प्रकृति का
आयु का बंध भी नहीं होगा,
आयु का बंध 7वें तक, जिसने 6ठे में आयु का बंध शुरुआत किया वो 7वें तक बांधता है, वह नए से बंधना शुरू भी नहीं होता, इसलिए आयु का बंध 7वें तक पाया, ऊपर नहीं बन दिया। अभी आगे बढ़ेंगे, मोहनी की बात करेंगे यहाँ पर, देखो 88 पृष्ठ पर
मोहनीय कम्मस दसठ ठाणाणी, समझ में दस स्थान में गिनाए आपको, अभी यहाँ पर भी गिनाएंगे। बावीस आए, इक्कीस आए, सत्तार रसन्नम, तेरसन्नम, नवन्नम, पंचन्नम, चदुन्नम, तिन्नम, दोन्नम, इक्कीस से ठाणम छे। मोहनीय कर्म के दस बंध स्थान है, दस बंध स्थान है, दस जुदे जुदे, बाईस प्रकृति वाला, इक्कीस प्रकृति वाला, इस तरह से बाईस प्रकृतिक, इक्कीस प्रकृतिक, ये कौमा कौमा लगा दो, सत्रह प्रकृतिक, तेरह प्रकृतिक, नौ प्रकृतिक, पांच प्रकृतिक, चार प्रकृतिक, तीन प्रकृतिक, दो प्रकृतिक और एक प्रकृतिक बंध स्थान। ये समझ में आ रहा है, ऐसा है तो इसे गुणस्थानों का भी स्वरूप स्पष्ट होता है। जिसको गुणस्थानों का अभ्यास है उसको तो ये सोचने में आसान होता है। देखो ना, अलग अलग प्रकृतियाँ कौन सी कहाँ कितनी बनती है, ये तो बंद की बात चल रही है अभी, तो यहाँ तो उदय का विषय नहीं है। तो मोक्ष मार्ग के पूरे गुणस्थानों का स्वरूप कितना क्लियर हो जाता है, ख्याल में आते हैं बात। बरोबर के गुणस्थानों में क्या क्या होता है, कौन से प्रकृतियाँ बंधना रुक जाती है, तो नया बंधन इतने का रुक जाता है और इतने का ही होता रहता है। तो ये सहज ऐसा वस्तु का स्वरूप, जीव तो इसमें कुछ नहीं कर रहा है, वो सहज रूप से होती है। तो कहते हैं जहाँ दस स्थान है, बाईस वाला, इक्कीस वाला, ये तो द्रव्यार्थिक मय का कथन होगा, अभी उसको खोलकर बताएंगे। यह द्रव्यार्थिक मयाश्रित सूत्र है क्योंकि वह अपने अंतर्निहित यानी उसमें गर्भित ऐसे समस्त अर्थों के बीज पद स्वरूप है। इसको हम कहें शॉर्ट में बता दिया, उसमें वो सारा विस्तार उसमें समझ में आ सकता है। तथ्य इमं बाईस आये स्थान, अब बाईस वाला स्थान यहाँ बता रहे मिच्छत्तम सोलस कसाया। देखो यहाँ ये बात लेना है, अभी मिथ्या दृष्टि जीव की बात यहाँ चल रही है, बाईस वाला स्थान तो उसको मिथ्यात्व तो बंद हो ही रहा है, परंतु कषाय कितने बंद है, सोलह अनंतानुबंधी के चारों। देखो जीव एट ए टाइम एक समय में या तो क्रोध करेगा या मान या माया या लोभ, जो मिथ्या दृष्टि कर रहा है अभी क्रोध कर रहा है, तो उसके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन चार प्रकार का क्रोध उसमें है, कर रहा है एक और बांध रहा है सब, क्रोध कर रहा है पर बंद हो रहा है क्रोध मान माया लोग सब। तुम्हें तो खाली क्रोध ही बेकार दिखता है ना, लोग करे तो भी क्रोध मान माया लोग बन रहे और सभी की सभी सोलह की सोलह बन रही है। तो कौन सा अच्छा है, क्रोध के मान के माया के, कोई अच्छा है? तो देखिए बंद स्थानों में से भी बात चल समझ में आती है। मिथ्या दृष्टि तो निरंतर इतने का बंद कर रहा है, मोहनी के तो कर्म बंद ही रहे नेता के साथ। तो मोहनी कर्म के उत्तरदश बंधन ऊपर में पड़े तथा इमं बाईसाय स्थान विच्छत्तम सोलस कसाया इथ्यवेद पुरुष वेद नहुसे वेद तिन्नम वेदानम एक कदरम। समझ में, तीन वेदों में से एक अस्तरदि अररि सोग दोनम युगलानम एक कदरम, यानी दो युगल, इसको युगल कहते दो की जोड़ी, हास्य के साथ रति ही बनती, हास्य के साथ अरति नहीं बनेगी, हास्य रति की जोड़ी बनेगी या शोक अरति की, विशुद्धि परिणाम है हास्य रति बनेगी, संकलेश हो जाते हैं शोक अरति बनेगी। तो दो युगल में से एक युगल और भय दुगुंचा ये दोनों ही बनते हैं। एदासिम बाविसाय पैडिनम एकम ही चेवठाणम बंध मानस, ये बाईस प्रकृतियों का एक ही बंध स्थान है। अब बाईस में जो भंग बताएंगे तो भंग तो तीन वेदों की अपेक्षा तीन अलग अलग होंगे और हर एक वेद के साथ एक युगल अलग जोड़ी पलटा पलटा करता होगा, यानी तीन तो उसके वेदों के और ये दो युगल के, तिंदुनी छह अलग अलग वैरायटीज होगी उसमें, बाईस का एक स्थान उसमें छह वैरायटीज होगी। ध्यान में आएगा कैसे, स्थान संख्या कितनी, बाईस, बाईस से कम ज्यादा नहीं बनेगी मोहनी की बात। यानी किसी को अभी सम्यक के नजदीक आया है तो थोड़ी कम बनेगी, नहीं ये 22 के 22 बंद होगा उसमें, अनुभव की अपेक्षा वेरिएशन पड़ेगा, 22 का बंद तो हो गया। देखो मोहनीय कर्म के उक्त 10 बंद स्थानों में से, 10 बंद स्थानों में से पहले गुण स्थान में हमने 22 वाला देखा था, वो 22 वाले स्थान की यहाँ चर्चा। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन तीन वेदों में से कोई एक वेद एट ए टाइम एक ही वेद का बंद होगा, और मिथ्या दृष्टि को हर अंतर्मुहूर्त में पलट पलट कर ये प्रत्येक का बंद होता ही रहता है नियम से, लगातार कोई नपुंसक वेदी बांधे या पुरुष वेदी ऐसा नहीं। हास्य और रति तथा अरति और शोक, इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल, देखो जो एक इंद्रिय जीव लगातार कितने असंख्यात उद्गल परावर्तन काल तक एक इंद्रियों में, उसका उदय नपुंसक वेद था, बंद तीनों का पलट पलट कर रहा है, स्त्री है पुरुष वेद और नपुंसक वेद, हाँ वो उसी पर्याय में जन्म लेता रहेगा तो उदय तो नपुंसक वेद कर जाएगा, ख्याल में आई बात, ये बंद की बात यहाँ हो रही, उदय की टोटल जुदी बात, वहाँ भी कौन से गुणस्थान में कौन से उदय होते हैं कौन से रुक जाते हैं उसके भी सब नियम। अब यहाँ बंद की चर्चा करते हैं, ये इसको कहते हैं बंद स्थान, जब उदय वाली चर्चा करेंगे तो कहेंगे उदय स्थान, वो अलग अलग, तो युगल में से इक्वल भय और जुगुप्सा। आवाज बड़ी थी लाइट गया है, हाँ अभी उसमें क्या है, इसमें है
कंप्यूटर तो
बंद होगा भी नहीं। चलो हम आगे बढ़े, हाँ देखो इसमें है अपने रिकॉर्डिंग चल रही है। ये हमने देखे ना, मैंने इन 22 प्रकृतियों का चाहिए, प्रकृतियों का हो गया बंद करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, ये 17 ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। देखो अभी इसमें भी ध्रुवबंधी कहते हैं, एक ध्रुवबंधी क्या होती है उसकी बात करते हैं। टोटल ध्रुवबंधी में से मोहनी की ध्रुवबंधी कौन सी, मोहनी की ध्रुवबंधी का अर्थ ऐसा है अपनी बंद की विच्छित्ति होने तक ये नियम से बनती रहती है। तो मिथ्या दृष्टि जीव है, अभी हम केवल मोहनी की बात करेंगे, तो उसमें मोहनी की कौन सी प्रकृति नियम से बनती ही है, तो कहते मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि सब सो मिलकर 16 कषाय और भय जुगुप्सा, ये 19 है वो ध्रुवबंधी, यानी नियम से बंधेगी, निरंतर बंधेगी, हर समय बंधेगी। डिफरेंस कहाँ पर है, तीन वेद में और दो युगल में, उसको ध्रुवबंधी नहीं कहते, उसको प्रतिपक्षी वाली कहते, प्रतिपक्ष प्रकृति। टोटल में जो ध्रुवबंदी की बात करेंगे तो मिथ्या दृष्टि है, हर एक कर्म की कौन कौन सी ध्रुवबंदी है, तो ज्ञानावरण की 5वीं ध्रुवबंदी है, मिथ्या दृष्टि के लिए दर्शनावरण की 9 के 9 ध्रुवबंदी है, अंतराय की 5वीं ध्रुवबंदी है, तो 5, 5, 10 और वो 9, 19 तो वो हो गई, और 19 तो मोहनी की हो गई, 19, 19 कितने हो गए, 38 हो गए। गोत्र की तो प्रतिपक्षी है, वेदनी की प्रतिपक्षी, उसकी बात नहीं कर रहे। अभी नाम कर्म में से ध्रुवबंदी कौन सी है, हर जीव को बंधेगी, तेजस है कारमा, फिर बंधने वाले में तेजस कारमा वर्णादि 4 वर्ण रस गंध स्पर्श अगुरु लघु उपघात, ये तो परघात उच्छ्वास हो तो हर समय नहीं बनते, गुल्लू उपघात हो गए कितने हुए 8 हो गए, और
हेलो
निर्माण ये ध्रुवबंदी नौ हो गई नौ 38 और 47 देखो फिर से नाम कर्म की नौ कौन सी है तो कहते तेजस शरीर कर्मण शरीर उसको तेजस कर्मण दिखे तेजस शरीर कहाँ आगे आ जाएगी तेजस शरीर कर्मण शरीर उसके बाद वर्ण रस गंध स्पर्श अग्र लघु उपघात और निर्माण इनका तो बंधन नियम से हर समय होगा बाकी ऑप्शनल होगी कोई सी गति बंधेगी कोई सी जाति बंधेगी आउट ऑफ रेंज आ रहा है क्योंकि लाइट नहीं है बंद भी नहीं हो रहा ठीक हाँ देखो अभी आगे बढ़ेंगे ये अर्थ फिर पढ़ते मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय ये 17 ध्रुवबंधी प्रकृतियां है क्योंकि उदय के समान बंध की अपेक्षा परस्पर में उनका कोई विरोध नहीं है इसलिए इनके साथ एक तरह इस शब्द का प्रयोग नहीं किया क्या कहना चाहते हैं जैसे उदय के समान बंध की अपेक्षा कोई समान नहीं इसका तो उदय किसी का एक का होता है क्रोध या मान या माया के लोग का वैसा बंध में नहीं बंध सबका होता है और एक तरह किसमें तीन वेद में से एक का बंध होता है तो वहाँ एक तरह शब्द लगाया इसमें से एक ऐसा इसमें नहीं होता ये सबका बंध होता है स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुसक वेद इन तीनों वेदों का तथा हास्य रति और अरति शोक इन दो युगलों का उदय समान बंध के साथ भी विरोध है यानी उनका उदय भी एट ए टाइम होता है किसी एक का वैसे उसमें बंध भी किसी एक का होगा यह बात बतलाने के लिए इनके साथ एक तरह शब्द का प्रयोग किया गया है किंतु भय और जुगुप्सा इन दोनों प्रकृतियों के साथ में एक तरह शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि बंध के प्रति उनका परस्पर में कोई विरोध नहीं है यानी दोनों ही हर समय बंद रही है वो निरंतर बंदी वो भी भय और जुगुप्सा पहले गुणस्थान से लेकर भय जुगुप्सा का बंध विच्छुति कहाँ होती है आठवें क्लास में तब तक वो सबको बनती रही आठवें गुणस्थान इन 22 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान होता है शंकाकार पूछते हैं उक्त प्रकृतियों का किस एक भाव में अवस्थान है प्रश्न चिन्ह चाहिए ये प्रश्न चिन्ह है ना दंड के बदले प्रश्न चिन्ह तो कहते हैं 22 प्रकृतिक एक भाव में अवस्थान है यानी 22 प्रकृति वाला जो स्थान है वैसा शंकाकार पूछते हैं एक ही वस्तु में आधार और आधे भाव कैसे बन सकता है क्योंकि वो 22 प्रकृति वाला ही बंध स्थान है और उसी में वो ही भाव है ऐसा कैसा कह सकते हैं तो कह रहे क्योंकि संख्यान से संख्येय कथनचित पृथकभूत होता है ये 22 ये संख्या हो गई 22 प्रकृति संख्या हो गई और वो संख्येय किसकी है वो बंध स्थान की इसमें उसमें कथनचित भेद है ये कहेंगे संख्यान और संख्या के जैसे हमने ज्ञान और ज्ञेय जो जानने में आता है वो ज्ञेय तो जिसकी संख्या बताई जाती है वो संख्येय और जो संख्या बताई जाती है वो संख्या इसलिए उसके आधारपना होने में कोई विरोध नहीं है अब 90 पेज पर आते हैं तम मिच्छा दिप्तिस्स ये 22 प्रकृति वाला स्थान केवल मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में होता है वह 22 प्रकृतिक प्रथम बंध स्थान मिथ्या दृष्टि के होता है क्योंकि मिथ्या तो प्रकृति का मिथ्या दृष्टि जीव के सिवाय अन्यत्र बंध नहीं होता है और इसका भी कारण यह है कि अन्यत्र मिथ्यात्व तो प्रकृति का उदय नहीं होता तथा कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ क्या कहते हैं, मौनी में विशेषता ये बात है, मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व का बंध होगा, और जहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं, मिथ्यात्व का बंध भी नहीं होगा। जैसे कोई जीव पहले गुणस्थान से चौथे में जाता है, तो करण लब्धि के अंतिम समय तक वो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का उदय भी है और मिथ्यात्व का बंध भी है। सम्यक्त्व के पहले समय में मिथ्यात्व का उदय भी रुक गया है, मिथ्यात्व का नया बंध भी रुक गया। इसलिए कहते कारण के बिना कार्य किए, निमित्त कारण की बात। यदि ऐसा न माना जाए तो अति प्रसंग दोष प्राप्त होगा। इसलिए यही सिद्ध होता है कि इस 22 प्रकृति प्रथम बंध स्थान का स्वामी मिथ्या दृष्टि जीव ही है। यहाँ पर बंध संबंधी भंग या भेद 6 होते हैं। मैंने बताया ना भंग, एक होता है स्थान, एक होता है भंग। स्थान तो उनकी संख्या कायम है 22 वाली। चेंजेस कहाँ हो सकते हैं 22 प्रकृतियों में? 3 वेदों की अपेक्षा 3 वेद, और हर एक पुरुष वेद के साथ भी हास्यरति या आरति शोक, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2, 3 × 6। इसको ये जो वेरिएशन होगी उसको कहेंगे भंग। स्थान तो वही रहेगा 22 वाला, संख्या 22 की 22 फिक्स। उसमें डिफरेंस कहाँ होगा? 3 वेदों के बंध में और हास्यरति या शोकरति के युगल में, 3 × 6, ये 6 उसको भंग कहेंगे। विशेषात यहाँ पर जो 22 प्रकृतिक बंध स्थान के, यानी 22 प्रकृति वाले बंध स्थान के 6 भंग बतलाए, 6 अलग अलग वेरिएशन बतलाए, वे इस प्रकार होते हैं। उक्त 22 प्रकृतियों में मिथ्यात्व, 16 कषाय और भय जुगुप्सा, ये 19 प्रकृतियां ध्रुव बंदी है, हमने गिनाए थे ना। अर्थात मिथ्यात्व गुणस्थान में इनका बंध निरंतर होता ही रहता है। शेष 3 वेद और हास्यरति तथा आरति शोक, ये दोनों युगल अध्रुव बंदी है, वो ध्रुव बरोबर करना, और सप्रतिपक्षी। देखो क्या कहना चाहते हैं, ध्रुवबंदी और अध्रुवबंदी। ध्रुवबंदी में तो हमने 47 गिनाई थी अभी, ज्ञानावन दर्शन अंतराय की मोहनी की, वो सब मिलकर और नाम कर्म, 47 ध्रुवबंदी। ये जो ध्रुवबंदी छोड़ो, बाकी सारे अध्रुवबंदी हो, वो 47 को छोड़कर जितने बाकी है वो सारे अध्रुवबंदी। अब अध्रुवबंदी में भी 2 प्रकार है, एक है सप्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष वाली, और दूसरे प्रतिपक्ष की कोई अपेक्षा नहीं उसमें, अप्रतिपक्ष यानी इसमें उसमें सिंगल है, उसमें कितने बनती है तो बनती है, नहीं तो नहीं भी बनेगी, और कितने ऐसे कि या तो ये बनेगी या तो वो बनेगी। मोहनीय में जो सप्रतिपक्षी वाली कौन सी है? 3 वेद वाली और 2 युगल वाली, ये 7 प्रकृतियां सप्रतिपक्षी, इसको सप्रतिपक्षी। जैसे अप्रतिपक्षी वाली कौन सी होती है? आतप है, उद्योत है, परघात है, उच्छ्वास है, वो सारे बंदेगी। हाँ, ये बंदेगी तो बंदेगी, उसका प्रतिपक्ष नहीं है कोई, उसमें आहार भी है, तीर्थंकर भी है, बहुत सारी ऐसी 11 प्रकृति ऐसी होती है। आयु भी बंदेगी बंदेगी, नहीं तो नहीं बंदेगी, उसमें कोई प्रतिपक्ष नहीं है, ये उसके भेद पाएगा। तो कहते वो अध्रुवबंदी और सप्रतिपक्ष, अर्थात एक साथ एक जीव में 3 वेदों में से किसी एक की वेद का और 2 युगलों में से किसी एक युगल का बंध होता है। अतएव नाना जीवों की अपेक्षा, यानी जुदे जुदे जीवों की अपेक्षा, 3 वेदों और 2 युगलों के विकल्प से, उसके कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, परस्पर गुणा करने पर 3 × 2 = 6 भंग हो जाते हैं, जो कि क्रमशः इस प्रकार है। देखो पहला मिथ्यात्व 6 में कॉमन रखा, 16 कषाय सब में कॉमन रखना है क्योंकि वो निरंतर ध्रुवबंदी है, और लास्ट में भय जुगुप्सा भी सब में कॉमन रखना। अभी क्या करना है, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुसक वेद, ऐसे 3 वेद किए और सब में हास्यरति कॉमन रखा, यानी पुरुष वेद के साथ हास्यरति, स्त्री वेद के साथ हास्यरति, नपुसक वेद के साथ हास्यरति, फिर अरति शोक को कॉमन कायम रखो और उसमें तीन वेद लगाओ, यानी छह अलग अलग विकल्प हो गया। जिस प्रकार यहाँ पर उक्त छह भंगों की उत्पत्ति बतलाते हुए उनका क्रमशः उच्चारण क्रम बतलाया गया है, उसी प्रकार आगे भी जहाँ जहाँ भंगों का उल्लेख आता है वहाँ पर भी भंगों का यही क्रम जानना चाहिए। ये भंग यानी वो वेरिएशन जो होते, स्थान यानी वो संख्या कायम है और प्रकृति बदलती, उसको भंग कहेंगे। हमने वेदिनी के बारे में बताया, प्रकृति एक ही है, किसी के साता बनेगी किसी के असाता बनेगी, वो उसका भंग हो गया। तथ्य इम एक विषाय ठानम इच्छत्तम नमुसे वेदम वच्च। मोहनीय कर्म के उक्त दश बंद स्थानों में पहला कौन सा, 22 वाला देखा हमने, 22 वाला पहला स्थान देखा। प्रथम बंद स्थान की 22 प्रकृतियों में से मिथ्यात्व और नपुसक वेद को छोड़कर यह 21 प्रकृति द्वितीय बंद स्थान होता है। जब सम्यक अभी दूसरे गुण स्थान वाले को स्त्री वेद और पुरुष वेद दो ही ऑप्शन है, उसके भी हास्य रति शोकर रति का ऑप्शन है, मिथ्यात्व तो नहीं बन रहा है, यानी उसके मिथ्यात्व तो के बिना 21 प्रकृतियां बन रही है। परंतु उसके छह विकल्प होते थे, तीन वेदों में दो युगल लगाते थे, अब यहाँ दो ही वेद है, दो वेद में से कोई अल्टरनेटली बंधेगा उसमें दो युगल लगेगा, यानी भंग चार हो गए और स्थान 21 वाला एक दूसरे। शंका, यहाँ सूत्र में और नपुसक वेद को इस प्रकार च शब्द का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा समुच्चयार्थ के जानने का और कोई उपाय नहीं है। समाधान, नहीं, क्योंकि च शब्द के बिना भी समुच्चय अर्थ का ज्ञान हो जाता है। व्यतिरेक रूप पर्यायार्थिक नए वाले जीवों के अनुग्रह के लिए यह सूत्र कहकर, व्यतिरेक रूप यानी क्या बताएं, मिथ्यात्व को छोड़कर कह दिया, तो छोड़कर कहने से कोई शिष्य जान गए, अब कौन सी बनती वो एक एक नाम लेके बताएंगे। अब विधि रूप द्रव्यार्थिक नए वाले जीवों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं, यानी वो एक एक का नाम बता के कहेंगे। वो तो अभी हम रुकेंगे यहीं पर, और अभी बाद में मिलेंगे हम 14 को मिलेंगे, पल नहीं। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तकनम सदा देव।